लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवारीय कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबंस की जीवनी पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटा नागपुर के प्रेरित लोगों को मुक्ति दिलाने वाले न्याय के शूरवीर और छोटा नागपुर में कैथोलिक मिशन के संस्थापक फादर कॉन्स्टेंट लेबंस का नाम छोटा नागपुर के इतिहास में सदा ऊंचा रहेगा। वे यीशु के प्रेम से इतने सराबोर थे कि किसी प्रकार की कठिनाई उन्हें विचलित नहीं कर सकी। छोटा नागपुर के लोगों के लिए गरीबी और बेरोजगारी के कारण आज भी बहुत प्रकार की कठिनाइयां हैं। हम फादर कॉन्स्टेंट लेबंस की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने लोगों की रक्षा करें। तो श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबंस के मिशन में सफलता के बारे सुना था। इस सप्ताह हम उनके व्यक्तिगत जीवन पर गौर करेंगे कि वे किस तरह अत्यंत गरीबी और त्याग में जीवन व्यतीत करते थे। तोरपा मिशन का दौरा कर मिशन सुपीरियर फादर ग्रोसिन बहुत खुश हुए, किंतु एक चीज ने उनके उत्साह को ठंडा कर दिया। वह था वहाँ रहने वाले फादर लेबंस एवं फादर डेस्मिथ की स्थिति। फादर ग्रोसिन लिखते हैं, मैं तोरपा से बहुत खुश हुआ। फादर लोग मुझसे सहमत हैं। फादर डेस्मिथ हमेशा दौरे पर रहते हैं। तोरपा सभी मिशन स्टेशनों में सबसे गरीब है। अन्य किसी भी स्टेशन में फादरों की स्थिति इतनी गरीब नहीं है। यह बहुत दयनीय स्थिति है। स्वयं मिशन सुपीरियर ने तोरपा की गरीबी का अनुभव किया था। जब वे तोरपा से रांची लौटे तो उन्होंने मनरेसा हाउस में फादर मोटेट को बतलाया कि तोरपा में उन्हें जो भोजन दिया गया था उसको उन्होंने उस भूमि में जितनी अच्छी चीज बिना रसोइये के दे सकते थे देने की कोशिश की थी, किंतु यह इतना अल्प था कि भूख नहीं लगने का बहाना कर उन्हें सोने जाना पड़ा था और रात में उन्होंने भूख सहन नहीं कर पाने के कारण उठकर कुछ खाने की मांग की थी। मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मैं इस तरह अधिक देर नहीं रह सकता। फादर ग्रोसिन इस स्थिति से बहुत चिंतित हुए क्योंकि फादरों को मिशनरी उत्साह के कारण अपने स्वास्थ्य का थोड़ा भी ख्याल नहीं था। ना तो फादर लेबंस और ना ही फादर डेस्मिथ अपनी गरीबी के प्रति सचेत थे। अपनी एकाकी में उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा था कि वे क्या खो रहे थे और उनके पास किस चीज का अभाव था। यदि फादर ग्रोसिन ने उन्हें उनके संकटपूर्ण जीवन के बारे सचेत किया होता तो भी कोई असर नहीं पड़ता। फादर ग्रोसिन के दौरे के 3 सप्ताह बाद फादर लेबंस ने प्रोविंशियल को पत्र लिखा। उन दिनों सिर्फ ये ही सवाल मेरे लिए चिंताजनक थे, खासकर कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है। किंतु हमारे प्रभु जिसने हमारे हिस्से में गरीबी आने दिया, उन्होंने बहुत कम खाने पर भी हमें संतुष्ट रहना सिखाया है। यही एक फायदा हमारी दयनीय स्थिति से है। मिशन सुपीरियर के जाने के बाद भोजन और जीवन शैली में सुधार लाने की बात वे तुरंत भूल गए और अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करना भी जारी रखा। उनके पास समय नहीं था, उनके अंदर की आग और उत्साह ही उनके भोजन थे। इस उत्साह से कार्य करते हुए और दबाव में आकर गति तेज करने की कोशिश वे अगले 5 वर्षों तक करते रहे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके साथी इस राह पर गिर पड़े जबकि फादर लेबंस आगे बढ़ गए। फादर जेंगलर को दिसंबर 1886 में तोरपा छोड़कर जाना पड़ा था। फादर लेबन्स ने अपने नए साथी फादर डेस्मिथ को शानदार पाया और दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया। फादर डेस्मिथ आश्चर्यजनक तरीके से उत्साही और रचनात्मक थे। फादर लेबन्स ने अपने एक पत्र में प्रोविंशियल को लिखा था, अपने उदाहरण से वे मुझे सिखलाते हैं कि किस तरह सच्चा मिशनरी बनना है। हमारे मिशन में हम दोनों बहुत खुश हैं। हम अपने सभी मामलों में एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, जिसके कारण सुपीरियर भी हमसे खुश हैं और वे हमें अलग नहीं कर रहे हैं। यह देखना दुखद है कि वह तिल्ली की बीमारी से पीड़ित है और शायद अधिक दिनों तक काम के भार का वहन नहीं कर पाएगा। यदि वे अपने मिशन में बने होते तो पूरी उम्मीद थी कि तोरपा एक शानदार मिशन बन जाता। फादर लेबन्स की लिखी स्याही मुश्किल से सुखी होगी और उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। फादर डेस्मिथ बीमार हो गए। फादर मोटेर ने जब उनके अस्वस्थ होने की बात सुनी तो उन्हें ठीक होने के लिए रांची बुलाया। फादर डेस्मिथ रांची आए, किंतु उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन बिगड़ता ही चला गया और उन्होंने 2 मई को अंतिम संस्कार ग्रहण किया। फादर लेबन्स अपने सहकर्मी और प्रिय मित्र की मृत्यु शया की ओर शीघ्रता से चल पड़े। प्रचारक और ख्रिस्ती विश्वासी, जो फादर डेस्मिथ को बहुत पसंद करते थे, वे भी रांची आए और उन्हें शक्तिहीन पाया। फादर लेबन्स के साथ मिलकर फादर डेस्मिथ ने लगातार प्रार्थना की, जबकि मरने की इस स्थिति में उन्होंने अपने लड़खड़ाते शब्दों में अपने मिशन कार्यों के बारे बतलाया, जिसने फादर लेबन्स को पूरी तरह हिलाकर रख दिया और उन्हें दुख से भर दिया। बाद में सभी की राहत और खुशी की बात थी कि खतरा टल गया था। सबसे अधिक राहत महसूस करते हुए फादर लेबन्स कृतज्ञता के साथ अपने मित्र को फादर मोटेट के संरक्षण में छोड़ तोरपा वापस लौटे, जहां वे मिशन के अपने भारी काम के सामने अकेले रह गए थे और अप्रैल से मध्य अगस्त तक बिना किसी सहयोगी के रहे। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स की जीवनी पर एक लघु चर्चा सुन रहे थे। इस पर क्रमशः चर्चा जारी रहेगी।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक लौटते कदम। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, व्यक्ति के जन्म लेते ही उसे बहुत सारे रिश्ते अपने आप मिल जाते हैं, लेकिन दोस्ती वो पहला ऐसा रिश्ता होता है जो व्यक्ति अपने आप बनाता है। व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने में उसके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो प्यार और विश्वास पर टिका होता है। जीवन में दोस्त तो बहुत बनते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, और उससे भी मुश्किल होता है अपने बहुत से दोस्तों में से सच्चे मित्र को पहचानना। सच्चा दोस्त वह होता है जो व्यक्ति को उसके अवगुणों से परिचित कराए और व्यक्ति को उसकी कमियां दूर करने के लिए प्रेरित करे। जो दोस्त आपकी हर बात पर सहमत होते हैं और आपकी तारीफ पे तारीफ किए जाते हैं, वो कभी भी अच्छे मित्र नहीं हो सकते। एक सच्चा दोस्त सदैव ही बिना किसी डर के आपको आपकी बुरी आदतों से अवगत कराता है, आपको अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता और आपकी भावनाओं को समझता है और जीवन की कड़वी सच्चाई को आपके सामने पेश करता है। इसके लिए क्यों ना अपनी दोस्ती को ही दांव पर रखना पड़े। अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं, तो सच मानिए आप बेहद भाग्यशाली हैं। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस का लिखा नाटक लौटते कदम।
उठो अजय, आज सारा दिन क्या यूं ही पड़े रहोगे तुम?
क्यों तंग कर रही हो यार, मैं तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ।
अच्छा, यूं इस तरह पड़े हो तो मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ क्या?
लो भला बताओ तो, मैं यूं पड़ा हूँ तो तुम डिस्टर्ब कैसे हो रही हो?
अच्छा,
कम से कम आज छुट्टी के दिन तो मुझे भी कुछ मन की कर लेने दो।
तो जैसे रोज तुम मेरे मन की ही करते हो।
सुबह सुबह तुम मुझे मेरे ना चाहते हुए भी हाथ में लंच बॉक्स पकड़ा कर घर से बाहर निकाल देती हो।
ओहो, शिकायत तो ऐसे कर रहे हो जैसे नन्हे से मासूम बच्चे हो। लंच बॉक्स हाथ में लेकर क्या तुम रोज स्कूल जाते हो?
ऑफिस या अपना अपना काम करने की जगह स्कूल की तरह ही तो है मैडम।
कैसे?
देखो, बच्चे का दिन भर में अधिकतर समय स्कूल में ही बीतता है और कामगार का अपने कार्यस्थल पर। जैसे स्कूल में बच्चों के कान छुट्टी की घंटी पर लगे होते हैं, वैसे ही कामगारों की आंखें घड़ी पर लगी होती हैं। तो क्या फर्क हुआ स्कूल और काम करने की जगह पर?
वाह अजय, तुलना तो तुमने अच्छी की आज।
ये तुलना तो मैं यूं ही कर बैठा कि घर में तुम्हारी मर्जी से मैं ऑफिस चला जाता हूँ और फिर दिन भर ऑफिस में अपने बॉस की इच्छा अनुसार काम करता हूँ।
तो
क्या, अब एक संडे ही तो मिलता है मुझे अपनी इच्छा से कुछ करने का, तुम उसमें भी अपनी टांग अड़ाती हो।
कभी संडे की छुट्टी में अपनी इस धर्म पत्नी पर भी तो तरस खाकर उसे घुमा फिरा दिया करो जनाब।
तो अब आई हो मतलब की बात पर, बताओ कहाँ चलना है आज?
आज लाल किले की सैर करने चलते हैं ना, अब जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज।
वाह, जगह तो बड़ी अच्छी चुनी है तुमने। अरे हाँ मीना, लाल किले से मुझे याद आया, कल लाल किले के सामने चांदनी चौक पर मैंने तुम्हारी वो सहेली है ना, वो क्या नाम है उसका?
कौन? रंजीता?
रंजीता नहीं यार, वो जो क्लिप लगाकर बालों को उठाकर ऊंचा करती है।
वो तो तुम काजल की बात कर रहे हो।
हाँ हाँ, काजल, काजल ही थी वो। उसने शादी वादी किया, ऐसे ही अभी भी उसकी जेब ढीली करती फिर रही है लोगों।
अरे वो तो अब भी कुमारी ही घूम रही है, फिर उसे बोलने और रोकने टोकने वाला है भी कौन? अपना कमाती है और अपना खर्च करती है।
मीना डियर, अपना कमाने और खर्च करने को तो सभी करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही। मगर स्त्री और पुरुष दोनों ही शादी क्यों करते हैं?
क्योंकि ये दोनों की ही जरूरत है, और भगवान ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के पूरक के रूप में एक दूसरे के लिए ही बनाया है।
वाह मीनल, वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। मगर एक वो काजल है जिसने अब तक इसके उसके साथ घूमने फिरने को ही स्त्री पुरुष की जरूरत समझ लिया।
हाँ, तुम सही कहते हो अजय, जीवन के रेगिस्तान में सफर के दौरान स्त्री के पास पति रूपी जल का होना उसके सफर को आसान बना देता है, जिसके सहारे वह अपनी मंजिल अपने पड़ाव पर सरलता से पहुंच सकती है।
मगर
है ना?
लगता है तुम्हारी सहेली अकेले ही किसी पड़ाव पर पहुंचना चाहती है शायद।
अजय, मुझे तो लगता है कि वो किसी मन लायक पति की तलाश में है, और मन लायक पति मिलते ही शादी कर लेगी और क्या।
बहुत खूब मीनल, तुम वाकई काजल की सच्ची सहेली हो। तुमने उसके अवगुण पर कितनी सफाई से पर्दा डालने की कोशिश की।
नहीं, ऐसा तो नहीं है।
मुझे एक बात बताओ, शादी करने तक क्या हम तुम पूरी तरह से एक दूसरे के मन लायक थे? नहीं ना मीनल, ये बात तो तुम भी जानती हो कि शादी हो जाने के बाद पति पत्नी को अपने आप को एक दूसरे के मन लायक बनाना जरूरी हो जाता है। फिर ये मन लायक पति न मिलने के बहाने से यूं ही कब तक रहना होगा?
हाँ, काजल को इस बारे में तो सोचना ही चाहिए ना।
सोचने का दौर खत्म हो चुका मीनल, अब तो उसे शादी कर ही लेना चाहिए। हमारे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है काजल को छोड़कर।
अब क्या आने दो उस काजल की बच्ची को, मैं अब
अरे काजल की बच्ची तो उसकी शादी के बाद ही होगी ना। चलो चलने की तैयारी करो।
चलो।
और मीनल क्या हो रहा है?
ओ आ काजल, आ बैठ। कहाँ से आ रही है?
आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो छुट्टी ली है। आज ऑफिस से बस डॉक्टर को दिखा कर आ रही हूँ।
क्यों तेरे साथ तेरा भाई नहीं गया? सबके अपने अपने नाटक हैं। सही बात तो ये है काजल कि इस दुनिया में जब जरूरत पड़ती है तब कोई भाई बहन या सगा काम नहीं आता सिवाय पति के। अब तू भी शादी कर डाल, कब तक इसके उसके साथ घूमती रहेगी फिरेगी इधर उधर।
मगर मैं जिंदगी के दूसरे ही रंग को जीना चाहती हूँ मीनल।
अब और कौन से रंग को जीना बाकी रह गया तेरा? शादी कर ले वरना पछताएगी बाद में।
शादी करके भी तो लोग पछता ही रहे हैं।
मगर उस पछतावे में कुछ यानी जीवन साथी की प्राप्ति भी तो है।
क्या शादी शादी, वही पति वही बच्चे, अपनी सारी आजादी को शादी के नाम पर पति जैसे जीव के पास धरोहर के रूप में रखकर उसकी मनमानी सहते रहो।
तू भूल रही है कि शादी दोनों हाथ से ताली बजने का नाम होता है ना? क्योंकि जितना वो घर पति का होता है उतना ही पत्नी का भी होता है। फिर ये पति पत्नी पर भी निर्भर करता है कि वो अपने एक एक हाथ की ताली मिलाकर बजाना चाहते हैं या फिर अकेले अकेले ताली बजाना देखना चाहते हैं बस।
यार तू तो अच्छे तर्क दे लेती है, तुझे तो LLB करके एक अच्छा वकील बनना था।
देख मैं तुझे कोई चुटकुला नहीं सुना रही हूँ यहाँ पर जो तू इस तरह हंस रही है। जिंदगी भी कोई चुटकुला नहीं है जिस पर तू हंसा करती है ना? तेरे कारण मुझे कई बार तेरे जीजाजी के सामने नीचा देखना पड़ता है। सुन काजल, अगर तू शादी नहीं करना चाहती और तुझे अपना रंग ढंग यही रखना है तो प्लीज आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मुझे बहुत काम है। और बाय।
ठीक मीनल दिया, मैं दुनिया के लिए चाहे जैसी हूँ मगर तुम्हारे लिए एक अच्छी सहेली थी और आज तुम अपनी अच्छी सहेली को खो रही हो। बाय। मीनल, ओ मीनल।
कहो काजल क्या बात है? तुम्हारे ये कदम जो अपनी सच्ची सहेली को छोड़कर तुम्हें यहाँ से ले गए थे आज फिर इस घर में कैसे पड़ गए?
उस दिन के बढ़ते कदम ही आज लौटते कदम बन गए हैं, अपनी सच्ची सहेली के पास लौटते कदम। मीनल उस दिन मुझे तेरी बातें बुरी तो बहुत लगी थी मगर जब जब मैंने उन बातों को सोचा तो मुझे लगा कि वाकई में तू ही मेरी सच्ची सहेली है जिसने जीवन की कड़वी सच्चाई से परिचित कराते हुए यह तक नहीं सोचा कि वह अपनी सहेली को खो भी सकती है। तुझे भले ही ऐसा ना लगा हो मगर मुझे बार बार ये बात सालती रही कि मैंने एक अच्छी सहेली खो दी है।
अच्छा तो अब अपनी सहेली को फिर से पाने तू फिर दौड़ी चली आई?
हाँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि एक अच्छी और सच्ची सहेली ही शुभचिंतक हो सकती है और निस्वार्थ भाव से सही सलाह दे सकती है।
तू इसका कोई सबूत दे सकती है मुझे?
बिल्कुल, ये लो।
ये क्या है? ओ शादी का कार्ड। अब तेरे घर में किसकी शादी निकल पड़ी है? अरे काजल ये तो तेरी शादी का कार्ड है, बधाई हो यार। तो आखिर तूने भी शादी की ट्रेन में बैठने का फैसला कर लिया?
हाँ यार, उस दिन मैंने तेरी बातों पर बहुत गौर किया और ये पाया कि जब बचपन में बाप का और जवानी में भाई का साया लड़की पर होता है तो बाकी जीवन में भी लड़की को पति के साये में रहना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए।
दिल खुश कर दिया यार तूने तो। मैं तो सचमुच में सोचने लगी थी कि मैंने तो अब अपने सहेली को खो दिया मगर तू तो।
मगर मैं तो तुम तक लौट आई हूँ मीनल, मेरे जाते कदमों को तेरी बातों ने लौटते कदम में बदल दिया। काश भगवान तेरे जैसी अच्छी और सच्ची सहेली सबको दे।
लौटते कदम। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटक सुना। इस नाटक के कलाकार थे अर्पना सिंह, मेरी प्रीति जोजो और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का यह प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।